आप हैं SBS हिंदी के साथ।
फाइजर बायोएनटेक टीके को अब उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है और अब इस टीके के साथ फरवरी के अंत में ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस के मद्देनजर अपनी सबसे असुरक्षित आबादी के लिए टीकाकरण शुरू करेगा। लेकिन ये टीका लगवाना डॉक्टर को दिखाना और शॉट लेने जितना आसान नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि वैक्सीन रोल आउट ऑस्ट्रेलिया में किस तरह होगा। वैक्सीन रोल आउट 5 प्राथमिकता चरणों में होगा। पहले समूह में ऑस्ट्रेलिया के क्वारंटीन और सीमा कार्यकर्ता, वृद्ध और विकलांगता देखभाल कर्मचारी और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे। अगले लोगों में 70 साल से अधिक उम्र के लोग, अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 55 से ज्यादा उम्र के आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर, छोटे वयस्क जिन्हें बीमारी या डिसेबिलिटी है और आपातकालीन सेवाओं में काम करने वाले हाई रिस्क कार्यकर्ता होंगे। तीसरे समूह में 50 से 69 वर्ष की आयु के वयस्क, सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर वयस्क और अन्य महत्वपूर्ण उच्च जोखिम वाले श्रमिक शामिल होंगे। फिर इसके बाद स्टेज 4, जो सबसे बड़ा समूह होगा, ऑस्ट्रेलिया की शेष जनसंख्या। अब बात करते हैं आखिरी समूह की। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे। हालांकि वो केवल तभी टीका लगाएंगे जब चिकित्सा सलाह में ये कहा गया हो। सिडनी के दक्षिण में हंटिंगटन गार्डन के एज केयर में कर्मचारी और निवासी टीके को लेकर बेहद खुश हैं। निदेशक फैन चेंग का कहना है कि उन्हें राहत है कि उनके कर्मचारी और निवासी जल्द ही वैक्सीन लेकर सुरक्षित हो जाएंगे।
Yes, I was quite excited. You know, this way, 2020 is very difficult year, especially for the aged care. We, all our staff and the residents did what we can. We do the everything. We try to stop the virus coming in. But with the situation with the other countries, so it's really bad. So if it's vaccine, we can have the vaccine, that will be big help to protect all the staff and protect our residents.
आपको बता दें कि टीका प्राप्त करने वाले पहले लोगों में 92 वर्षीय हंटिंगटन गार्डन में रहने वाली जुआन माइल्स भी होंगी, जो एक युवा वयस्क के रूप में पोलियो से बची थी। वो कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे।
Having seen diphtheria and polio and all those sort of things, I feel that people are stupid if they don't try to get protected. They obviously have not seen, as I have in the past, people being completely incapacitated, unable to do the things that they've been used to doing, want to do, to earn a living, and I've seen people die.
अब ये तो समझ आ गया कि किस प्राथमिकता पर आपको टीके लगेंगे, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आपको टीके कहाँ और कैसे लगेंगे। तो चलिए आपको ये भी समझाते हैं। दरअसल ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वैक्सीनेशन कब होता है। जो लोग पहले दो प्राथमिक समूह में आते हैं, उन्हें महानगरीय और क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया के 50 अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा। रेजिडेंशियल एज केयर और डिसेबिलिटी देखभाल सुविधाओं में रहने वाले या काम करने वाले लोग भी साइट पर टीका लगवा सकेंगे। पहले दो चरणों के खत्म होने के बाद टीके एक बड़ी आबादी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके बाद टीका पाने के 1000 स्थान निर्धारित होंगे। इसमें आपके स्थानीय GP, रेस्पिरेटरी क्लिनिक, वैक्सीनेशन क्लिनिक, कम्युनिटी फार्मेसी और आदिवासी स्वास्थ्य सेवाएं जैसी जगह भी शामिल होंगी। डॉक्टर कॉलिन मेंडले का कहना है कि उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के वैक्सीन रोल आउट की आधारशिला रखने के लिए सामान्य चिकित्सक बहुत अहम हैं।
Very much looking forward to being part of it. General practice is well placed to roll out the vaccine, in my opinion. You know, this is what we do year in, year out with the routine vaccination programs, with flu vaccination every year. So the infrastructure is in place. The expertise is there, so as GPs, it's very pleasing to have what we do being used effectively.
ये तो बात हो गई कि टीका किसको और कैसे मिलेगा, लेकिन ये रोल आउट योजना ऑस्ट्रेलिया के चुने हुए वैक्सीन उम्मीदवारों को मंजूरी देने वाले ऑस्ट्रेलिया के थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पहले वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक शॉट को अमेरिका और ब्रिटेन में उपयोग के लिए मंजूरी देने के लगभग 2 महीने बाद सोमवार यानी कि 25 जनवरी को मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स टीकों के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। अब सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन को अप्रूव करने में दूसरे देशों की तुलना में अधिक समय क्यों लग रहा है? तो इसका जवाब बर्नेट इंस्टीट्यूट के एपिडेमियोलॉजिस्ट प्रोफेसर माइक टोली देते हैं, जो कहते हैं कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कम कोरोना मामले हैं, इसलिए हम पूरी तरह से संतुष्ट होकर वैक्सीन को अप्रूवल दे सकते हैं।
At this time in the pandemic, I think Australia has the advantage of having very few cases. At the moment, it's just in a handful of suburbs in Sydney, and so we can look at the rest of the world and learn from their experiences. So quite rightly, they are rolling the vaccine out very fast, and they can afford perhaps to take a few risks. Now, that's not the case in Australia.
Therapeutic Goods Administration ने Oxford AstraZeneca को provisional determination दिया है, ठीक वैसे ही जैसे Pfizer BioNTech को approval से पहले दिया गया था। आपको बता दें कि provisional determination vaccine approval के लिए पहला कदम जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि टीके को approval मिलेगा ही। लेकिन ये थेरापूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन को वैक्सीन निर्माताओं से परीक्षणों के विभिन्न चरणों के नैदानिक डेटा को स्टडी करने की शुरुआत करता है। थेरापूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो दूसरे देशों में रोल आउट किए गए टीकों की प्रभावकारिता और सुरक्षा की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। SBS न्यूज के लिए क्लॉडिया फारहट की रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए पेश किया है विकास अवाना ने।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।